धवला पुस्तक 15वी लेक्चर नंबर 13
ॐ नमः सितेभ्य ॐ नमः सितेभ्य ॐ नमः सितेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्तानं नमो सीतानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूनं
सयलिन्दविन्दवन्दिय महिनन्दिय भौवपौमवणसण्डम् अभिनन्दनजिनणाहं नम्यो नौकमं वोच्छम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो शेष 18 नियोग द्वारों की चर्चा चल रही है उसमें भी हम 15 पुस्तक के पृष्ठ संख्या 59 पर आ गए। देखो अभी पहले हमने ये जो उपक्रम का अर्थ क्या होता है मालूम है ना, बंधने के बाद उसमें जो कोई बातें बत्ती होती है सेकंड समय से लेकर जब तक सत्ता में रहते हैं, तो उसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें जो उपक्रम के अंदर बंधन उपक्रम होता है और उदीर्णा उपक्रम, उपशामना और विपरिणाम वो बाद में आएगी, अभी तो उदीर्णा की बात चल रही है। उदीर्णा में हमने एक एक प्रकृति उदीर्णा देखी और प्रकृति स्थान उदीर्णा देखी और उस पर बहुत सारी बातें, ये सब मूल प्रकृतियों पर घटित किया था। अभी अपना विषय उत्तर प्रकृतियों की बात यहाँ चल रही है। तो उसमें पहले हम यहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण वगैरह की जो उत्तर प्रकृतियां उसकी बात अपनी 54 पेज से शुरू हुई थी, यानी उसके उदीरक जीव कौन है उसकी अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी। देखो उत्तर प्रकृतियों में 5 ज्ञानावरण का उदय कहाँ तक है, 12वें तक है, तो उसकी उदीर्णा कहाँ तक होगी, एक आवली कम तक, हाँ यानी तब उसकी रुक जाएगी और पांचों के पांचों एट ए टाइम ही उसका उदय उदीर्णा वहां तक एट ए टाइम होती है। दर्शनावरण में अलग बात है, दर्शनावरण में 3 की बात अलग है। तो उसमें जो ये जो 12वें के अवली पहले तक जो होती है वो 4 दर्शनावरण में भी हो जाएगी, निद्रा प्रचला में भी हो जाएगी, क्योंकि उसका उदय उपांत समय तक है, परंतु अंतिम समय में उदय नहीं है, परंतु हाँ परंतु पहले अवली पहले तो उदीर्णा रुक गई है उसकी। फिर 5 अंतराय भी उसी पर है। अब निद्रा प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि की बात थी, तो उसका उदीरक कौन है, तो पहले जब तक पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उसकी उदीरणा शुरू नहीं होती, एक बात ये महत्व की, यानी बाद में उसका उदय और उदीरणा शुरू होती, उसके पहले उदय भी नहीं है। और कहाँ तक होता है तो हाँ छठे तक, क्योंकि उसकी उदय की उच्छित्ति है तो उदीरणा भी रुक जाती है अंत तक। हाँ परंतु उत्तर शरीर की विक्रिया करने वाले के अभिमुख जीव जो है तो अंतिम आवली से लेकर, और जब आहार शरीर को छोड़कर फिर मूल शरीर में प्रविष्ट नहीं होता है तब तक वो अनुदीरक है, यानी उसका उदय उस समय नहीं है। वैक्रियक शरीर बनाता है या आहार शरीर बनाते हैं तो वहां प्रमत्त में रहते हुए भी उनके ये स्थान वृद्धि त्रिक का उदय नहीं है, उदीर्णा भी नहीं है। प्रमत्त संयत की बात है,
प्रमत्त उसके बाद नहीं।
देखो यह क्या किया है, उत्तर शरीर की विक्रिया के अभिमुख हुए प्रमत्त संयत के, उसकी बात है। और फिर दूसरे भी बताएं कि जो अन्य भी जो जीव है वो उत्तर शरीर की विक्रिया करने वाले हैं, मनुष्य तीरंज भी, यानी वहां तो छठे गुणस्थान की बात नहीं है। छठे गुणस्थान की बात तो आहार और विक्रय के लिए बता दी, अब कहते अन्य भी मनुष्य और तीरंज जो विक्रिया करने वाले हैं, भोग भूमि वालों के भी तीन का उदय नहीं है, उदीरना भी नहीं है, देवों के भी नहीं है, नारकियों के भी नहीं है। यहाँ तक समझ में आई बात? और अपर्याप्त अवस्था में जीवों के नहीं है। फिर पढ़ती हूँ मैं, देखो तीसरी लाइन से विशेषता इतनी है कि 55 पेज में उत्तर शरीर की विक्रिया के अभिमुख हुए प्रमत्त संयत की अंतिम आवली से लेकर आगे जब तक आहार शरीर उत्थित होकर के, उत्थित यानी छोड़कर मूल शरीर में प्रविष्ट नहीं होता, तब तक वह इनका अधिनिधिरक है। यानी आहार शरीर बनाने के पहले ही एक आवली पहले ही उसके जो उदीरना रुक जाती है। अभी अप्रमत्त संयत देव नारकी आहार शरीरी उत्तर शरीर की विक्रिया को प्राप्त तीर्यंच और मनुष्य तथा असंख्यात वर्षायुष का, यानी वो सारे भूमि वाले, ये सब उक्त स्त्यांगदी आदि तीन प्रकृतियों के अनुदीरक है, क्योंकि उनके उसका उदय नहीं उदीरणा भी नहीं। अब मिथ्या दृष्टि से लेकर, अभी ये तो हो गई हमारे दर्शनावरण की बात, अंतराय की बता चुके, अभी वेदनी की बात बताएंगे। मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त गुणस्थान के अप्रमत्त गुणस्थान के अभिमुख हुआ अंतिम समयवर्ती प्रमत्त संयत तक साता व असाता वेदनी की उदीरणा के योग्य होता है। ये तो आसान है समझना। अब मिथ्यात्व का उदीरक कौन है? मिथ्या दृष्टि जीव। तो सम्यक्त्व के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि तक मिथ्या दृष्टि जीव ही मिथ्यात्व प्रकृति का उदीरक होता है, परंतु ये बात वेदक में घटित होगी, क्योंकि उसके तो उदयावली में प्रविष्ट है सारे मिथ्यात्व के, और वहां तो कोई गैप वगैरह नहीं है, बीच में अंतर किया हुआ नहीं है वेदक ने, तो उसकी तो उदीरणा चलेगी अंतिम समय तक। परंतु जो औपशमिक सम्यक दृष्टि है उसने बीच में अंतर किया है, और हमने देखा ना द्वितीय स्थिति से प्रथम स्थिति में जब आते रहते हैं आगाल प्रत्यागाल हमने देखा था, पर जब प्रथम स्थिति में दो आवली रहती है तो ऊपर से अपकर्षण होकर नीचे आना जिसको आगाल कहते वो रुक गया, अब दो आवली बाकी है तो ऊपर के आवली से नीचे के आवली में उदीरणा मात्र हो रही थी, वो भी कब रुकेगी? एक आवली निषेक बाकी रहेगी प्रथम स्थिति में, तब यानी अनिवृत्तिकरण में एक आवली बाकी है अनिवृत्तिकरण परिणाम, तब वो उदीरणा रुकेगी। यही बात यहाँ लिखी है, देखो पेज नंबर 55। सम्यक्त्व के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि तक, वो तो पढ़ा हमने, मिथ्या दृष्टि जीव ही मिथ्यात्व प्रकृति का उदीरक है। विशेष इतना है कि उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति में एक आवली के शेष रहने पर उदीरणा नहीं होती। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव, अभी वो तो मिथ्यात्व की मिथ्यात्व प्रकृति की बात हो गई, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव अपने अंतिम समय तक सम्यक मिथ्यात्व का उदीरक होता है, क्योंकि उसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय है तो उसकी उदीरणा भी चल रही है। यानी वो भले वो तीसरे में से चौथे में जावे या पहले में जावे, अंतिम समय तक उदीरणा है। असंयत समय दृष्टि से लेकर, पेज नंबर 55 हम जरा रिवीजन कर रहे हैं उत्तर प्रकृतियों की, असंयत समय दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक सम्यक्त्व प्रकृति के उदीरक होते हैं। यानी वो वेदक समय दृष्टि के सम्यक प्रकृति का उदय है तो उसका उदीरणा भी चलती है। विशेष इतना है कि सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय अथवा उपशम करने वाले जीवों के सम्यक्त्व की स्थिति के उदयावली में प्रविष्ट होने पर उसकी उदीरणा संभव नहीं है। यानी जब हाँ हमने देखा था ना क्षपणा करने वाले के, हमने देखा था जब एक आवली प्रमाण निषेक बाकी है, केवल सम्यक प्रकृति बची है और एक आवली प्रमाण बाकी है निषेक, तभी उसके उदीरणा होने के लिए आवली के ऊपर निषेक ही नहीं है, वो बात द्वितीय उपशम कल हमने बात की थी। और द्वितीय उपशम में भी देखो, क्योंकि प्रथम उपशम में तो क्या है कि प्रथम उपशम में तो गैप है, परंतु देखो ना, पर प्रथम उपशम करने वाला कहाँ होता है, उसका उदय किसका है? मिथ्यात्व का। और द्वितीय उपशम करने वाले का उदय किसका है, तो सम्यक प्रकृति का, इसलिए उसको लिया हमने, हमने उसकी बात भी की थी यहाँ पर। वेदक वाले को किए थे, हाँ, क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व का उदय था तो उसकी उदीर्णा हो रही थी। देखो पहले गुणस्थान में भले उसकी तीन प्रकृतियों की सत्ता है और तीनों का उपशमित करने वाला है, फिर भी उदय मिथ्यात्व का है तो उदीर्णा भी मिथ्यात्व की होगी। सम्यक प्रकृति की वहाँ उदय उदीर्णा नहीं कहेंगे, ख्याल में आई ना बात? उसके तो जो क्रम से नीचे के नीचे आ रहे बस उतनी ही बात है। अब यहाँ आगे बढ़ते पेज नंबर 56 पर देखें। फिर से प्रश्न पूछे,
28 की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि है,
28 की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि,
उसको सम्यक मिथ्या तो और सम्यक तो की उदीर्णा नहीं होगी।
हाँ, उसका उदय भी नहीं उदीर्णा भी नहीं,
नहीं,
नहीं होती है। अभी हमने स्वामित्व क्या देखा, सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाला कौन है, अंतिम समय तक, और सम्यक प्रकृति की उदीर्णा करने वाला कौन है, चौथे से सातवें तक, ख्याल में नहीं? यानी वो तो भले वहाँ तीन प्रकृतियां पड़ी है सत्ता में और प्रशस्त उपशमय ने मिथ्यात्व रूप से परिणमित होकर उदय में भी आ रहे हैं, परंतु ऊपर क्या अपकर्षण होकर उदयावली में देना, अन्य दो प्रकृतियों में ये कार्य नहीं हो रहा है। यानी उदीर्णा से क्या मतलब, तो ये कितना स्पष्ट हो रहा है कि भले सत्ता में है उदय में भी उसकी उदीर्णा नहीं होगी। जैसे अनंत अनुबंधी है और किसी को सम्यक दर्शन हो गया, तो भले वो उपशमिक हो या क्षयोपशमिक हो, तो उसका तो अप्रशस्त उपशम है, तो सम्यक तो होने पर उसकी उदीर्णा होगी क्या, तो कहते नहीं होगी। कहाँ होगी, पहले और दूसरे गुणस्थान में होगी। देखो अभी यहां देखते हैं पेज नंबर 56 पर, अनंतानुबंधी चतुष्क का मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्य दृष्टि जो उदीरक होता है, अप्रत्याख्यान चतुष्क का जहां तक उदय है वहां तक बताना है, पहले से लेकर चौथे के अंतिम समय तक, प्रत्याख्यान का पहले से पांचवे के अंतिम समय तक, फिर नपुसक वेद का उदीरक कौन है, जो नपुसक वेदी है जिनका उदय है उसकी उदीर्णा तो होती होती है, परंतु मनुष्यों में क्या विशेषता है कि नवे गुणस्थान के पहले भाग तक उसका उदय है, तो उसमें जो क्षपक हो या उपशामक हो, जब हम कहते हैं कि वो जो चारित्र मुनि में अंतर किया जाता है, तो जो नपुसक वेद सही चढ़ने वाले के नपुसक वेद की पहली स्थिति बनेगी अंतर्मूर्त, एक कषाय की अंतर्मूर्त होगी और बाकी प्रकृतियों की आवली प्रमाण होगी, तो वो तो उसका उपशम करते करते ऊपर के परमाणु सारे उपशमित होते 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 दो आवली बचेगी प्रथम स्थिति में, तब उदीर्णा हो रही है। जब आवली प्रमाण निषेक बाकी रहेंगे जो उदय में आने वाले हैं, तो यही बात यहां लिखी है, प्रथम स्थिति के उदयावली मात्र शेष रहने पर नपुसक वेद के अनुदीरक होते हैं। उसी प्रकार स्त्री और पुरुष वेदों के भी उदीरकों का कथन करना चाहिए। फिर हास्य रति अरति शोक भय और जुगुप्सा, हमने देखा था आठवें तक उसका उदय है, उदय की उच्छित्ति होती वहां पर, तो यहां पर भी अंतिम समय तक है। दूसरी विशेष बात उन्होंने बताई कि देव में जो उत्पन्न होता है तो पहले अंतर्मूर्त तक साता वेदनीय हास्य और रति की उदीर्णा यानी उसी का उदय है नियम से, और नारकियों में असाता है शोक रति है। अब तीन संज्वलनों की उदीर्णा, मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण काल में अपने अपने बंधाध्यवसानों के अंतिम समय तक, जब तक उसका अंतिम यानी बंध होता है, क्योंकि उच्चिष्टावली बाकी रहती है तो उदय भी रुकता है और बंध भी रुकता है, तो वहां तक उसका उसकी उदीर्णा है। संज्वलन लोभ की पहले गुणस्थान से लेकर दसवें के अंत समय, पर एक समय अधिक आवली शेष रहने तक, जब आवली रहती है तो अनुदीरक हो जाता है। उसके बाद हमने देखे नारकी यानी चारों जो आयु है, तो पहले समय से लेकर आयु की उदीरणा चालू होती है, उदय उदीरणा, और अंतिम जो मरण के एक आवली पहले उसका अनुदीरक हो जाता है, चारों ही आयु में ये बात बताई। अब नाम कर्मों की जरा विशेषता है। नाम कर्मों में गति नाम कर्म वगैरह जाति नाम कर्म हमको देखना है। तो गति नाम कर्म के जैसे आयु में आवली पहले रुक जाती, वैसे गति नाम कर्म में नहीं रुकती उदीर्णा। पहले समय से अंतिम समय तक उसकी उदीर्णा होगी अपने अपने गति नाम कर्म की। देखो ये पेज नंबर 57 पर नए पैराग्राफ की एक लाइन पढ़ेंगे। नरक गति नाम कर्म के सभी नारकी उदीरक है और तिर्यंज गति नाम कर्म के सभी तिर्यंज योनि वाले जी उदीरक होते। मनुष्य गति में क्या विशेषता है? क्योंकि हमने देखा था उदीर्णा की विच्छित्ति चेहरे में हो जाती है नाम और गोत्र की, तो बाकी अयोगी है उसके अनुदीरक रहेंगे, बाकी सब मनुष्य मनुष्य नहीं, यानी मनुष्य के जितने कोई जो भेद है वो सब उसमें आ गए। ये तो गति गति की बात। देवगति का भी पहले समय से अंतिम समय तक उदीरक। अब जाति नाम कर्म, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के सब एक इंद्रिय जीव, जो जिसकी जाति का उदय है तो पूरे भव में उसका उदीरक होगा। पंचेंद्रिय जाति में क्या लेना है? हाँ, अयोग्य को नहीं है, बस इतना है। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदीरक अन्यतर जीव, जो कि औदारिक शरीर का निर्वर्तक है, निर्वर्तक यानी उसकी रचना करने वाला, क्योंकि हमने देखा था कि विग्रह गति में एक मोड़ या दो मोड़ तक तो उसकी औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, उसका उदय वहां पहुंचने पर होता है, तब उसका वो निर्वर्तक भी कहलाएगा, तब उसकी उदीरना शुरू हो जाती है। वैसे वैकिरिक शरीर का आहारक शरीर का सबका समझना। तेजस और कार्मन का अनादि से है और तेरवे के अंत तक, यानी योग जब तक है तब तक उसको बात चलेगी। अंगोपांग में ऐसा ही है, क्योंकि जब शरीर और अंगोपांग दोनों का उदय विग्रह गति के बाद जहां वो शरीर धारण करता है उस समय से होता है, तो उसका भी ऐसा ही है। संस्थान का भी उदय वहां ही शुरू होता है, शरीर नाम कर्म के साथ ही संस्थान नाम कर्म का उदय, क्योंकि वो विग्रह गति में नहीं होता है, इसलिए उसको भी वहां ही ले लेना। और सहनन में से वज्रसुम नारा सहनन की भी उदीरणा का कथन ऐसा ही लेना चाहिए। अभी अश्विन भाई जरा माइक में उत्तर देना, आप अकेले वज्रसुम नाराज को ले क्यों ले यहाँ पर?
उसका तेरवे तक उदय, अरे तेरवे तक उदय है।
हाँ, क्योंकि उसकी उदीरणा तेरवे वाले को उसी का उदय है और उसकी उदीरणा तेरवे के अंत तक चलेगी। वैसे संस्थानों की भी उदीरणा तेरवे के अंत तक,
सभी संस्थानों की,
क्योंकि छह संस्थानों का उदय हो सकता है केवल को। तीर्थंकरों को तो समय चतुरस्र होगा, पर अन्य जीवों को तो अन्य भी संस्थान हो सकते हैं, इसलिए इनका उदय तेरवे के अंत तक, ये सबके लिए कॉमन है, इसलिए उसकी अकेले की बात यहाँ ली। अब अन्य जो दो संस्थान है कौन से?
ग्यारहवें संस्थान में तो,
हाँ, जो ग्यारहवें तक उसका उदय, वज्र नाराज और नाराज
ग्यारहवें तक,
हाँ, उसकी ग्यारहवें तक उदीरना होगी।
तो बाकी के तीन का साथ,
और नीचे के जो तीन है वो तो सातवें तक होगी। अभी जैसे वैकिरिक शरीर अंगोपांग की उदीरणा कहाँ से कहाँ तक होगी? क्योंकि देवों के कौन से गुण स्थान है, वहां से उनकी बात की। अरे विग्रह गति किसी भी शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। तेजस शरीर और कार्मण का तो है, परंतु बाकी किसी का नहीं है। यानी वैकिरिक शरीर और औदारिक शरीर का जो उदय उदीरणा वहां पहुंच, निर्वर्तक शब्द आया था ना, तो वहां ले लेना। इसलिए निर्वर्तक में हम देखो उसकी उदीरणा करने वाला तीसरा गुण स्थान है, परंतु उसकी शुरुआत तीसरे में नहीं हो, क्योंकि तीसरे में कोई मरकर जाता नहीं अन्यथा, इसलिए वो शब्द उनका बराबर फिट है वहां पर। आहारक द्विक की, जब वो आहारक शरीर बनाता है तभी उसकी उदीरणा उदय से उदीरणा होगी। अब ये हमने देखा था बंधन और संघात की शरीर के समान है। वर्ण रसगंध स्पर्श की मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोगी के अवली तक होती है। उसका उदय विग्रह गति में है कि नहीं है? तो ध्रुवोदयी कौन सी प्रकृति है? ध्रुव देह कहो अभी या 21 में से उसको गिनो ना, 21 प्रकृतियां जो उदय रूप है उसमें कुछ ध्रुव देह है और कुछ जैसे गति नाम कर्म है, तो चार में से कोई एक होगी, उसको ध्रुव देह नहीं कहेंगे, चार में से एक है, जाति है, त्रस्य सावर है, पर्याप्त, ये तो इसमें से भी अगुरु लघु वगैरह जो है केवल परघात और वो बाद में उसका उद्देश्य होता है। हाँ, परघात और उच्छ्वास होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बाद में तो उदय होने वाला नाम कर्म का कोई ग्रुप नहीं है वहाँ पर। देखो जरा कर्मकांड की पुस्तक निकालना बेटा,
क्योंकि शरीर का उदय नहीं है वहाँ पे, तो शरीर के साथ ही वर्ण गंधर रस स्पर्श का उदय होगा।
कर्मकांड चाहिए मुझे, कर्मकांड ब्लू ब्लू नहीं, वो रेड वाला कर्मकांड, हाँ दूसरा भाग, क्योंकि नाम कर्म के उदय स्थान उसमें होने वाले है उसमें। हाँ सेकंड भाग होना चाहिए, क्योंकि बाद में जो नाम कर्म के जो है ना उसमें शरीर नाम कर्म है, अंगोपांग है, सहनन है, संस्थान तो संस्थान भी है, वो वहां जाने पर शुरू होते हैं। आप उदय स्थान निकालो नाम कर्म के। किसका कौन से 13 नाम कर्म के उदय स्थान 564 निकालो थोड़े, क्योंकि अभी ये काम वाली चीज है तो ये बाद वो तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पर हमको देखना है 564। देखो पहले में पहले नाम कर्म के उदय स्थान जब कहेंगे तो विग्रह गति वाला यानी कर्म शरीर में, दूसरा मिश्र शरीर, तीसरा शरीर पर्याप्ति में, चौथा श्वासोश्वास पर्याप्ति में और भाषा पर्याप्ति में, यानी कारमान काल कब के कारमान का योग है तब कारमान काल कहेंगे, वो विग्रह गति में भी होता है और समुद्घात में भी होता है। एक बात, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक शरीर मिश्र काल, देखो पहला कौन सा लिया हमने, कारमान काल कहो या विग्रह गति काल, दूसरा शरीर मिश्र शरीर काल यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पूर्व तक, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई और श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक शरीर पर्याप्ति काल, और श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण हुई और भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक श्वासोश्वास पर्याप्ति काल, और भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद आयु प्रमाण मरण तक भाषा पर्याप्ति काल। कौन से देखे हमने, एक तो विग्रह गति या कारमान काल, मिश्र शरीर, शरीर पर्याप्ति यानी पर्याप्ति पूरी हुई और आगे वाली श्वासोश्वास नहीं हुई, उच्छ्वास को या श्वासोश्वास को और भाषा, पांच ही होते हैं, ये मन पर्याप्ति से कोई संबंध नहीं है, उसमें कोई नाम कर्म का कोई अन्य निमित्त नहीं बनता है, इसलिए पांच उसके उदय के अलग अलग। अभी उसमें विग्रह गति में कौन सी प्रकृतियों का उदय हम देखते, देखो पेज नंबर 564 से ये बात शुरू हुई है। अब देखो 566 पेज पर, मैं भी जरा पेज नंबर लिख के रखती हूँ यहाँ पर, एक कर्मकांड, हाँ वो तो भाग एक और दो में पेज नंबर वही है, कर्मकांड दो 564 से आगे। अब 566 पर ये जो है विग्रह गति में जो कौन कौन से, तो ध्रुवोदयी कौन सी है, तो तेजस शरीर कारमा शरीर, अनादि से तो उसका उदय हर समय चल रहा है, बंद भी चल रहा है उदय भी चल रहा है, वर्णादि चार है ना, उसका उदय है वहां पर, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, देखो इसका बंद एट ए टाइम एक का होगा शुभ या अशुभ का, परंतु उदय दोनों का होता है, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, अगुरु लघु और निर्माण, ये उपघात परघात उच्छ्वास यहाँ नहीं है। हाँ ये 12 प्रकृतियां ध्रुवोदयी। अब फिर भी विग्रह गति में और भी प्रकृतियां है ना, जिसमें गति में से कोई एक, जाति में से कोई, वो भी अभी गिनाएंगे, तो ये 12 और वो 9 होगी, तो सब जीवों के इनका निरंतर उदय पाया जाता है। कौन कौन से हमने देखी, तेजस कारमाण वर्णादि चार, अगुर लघु निर्माण सिर असिर और शुभ अशुभ, ध्रुवोदयी ध्रुवोदयी प्रक्रिया बारह है, यानी ध्रुवोदयी बारह हो गए। उसमें तेजस है, कारमाण है, वर्णादि चार, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ। अगुर और निर्माण, अगुर लघु और निर्माण, हाँ ये तो हो गई ध्रुवोदय बारह। उसमें बोलो, उसमें बोलो आप, हाँ बोलो।
तीर्थंकर प्रकृति भी ध्रुवोदय में लेते हैं, पर वो विग्रह
कहाँ ध्रुवोदय में लेते हैं, अरे ध्रुवोदय कहाँ की है।
अच्छा ध्रुव,
ये ध्रुवोदय का अर्थ होता है अनादि से जो उदय में आ रही है। आपको निरंतर बंदी कहना है, एक बार बंधना शुरू होती है तो और ध्रुव बंदी भी अलग है। ध्रुव बंदी वो ज्ञानावरण आदि जो अनादि से बंध रही है। ज्ञानावरण की पांच है, दर्शनावरण की नौ है, अंतराय की पांच है, मिथ्यात्व है, सोलह कषाय है, भय जुगुप्सा है, वो सब, और ये जो नाम कर्म की नौ है उसको हम ध्रुव बंदी कहेंगे, वो बात अलग है। उसमें अंतराय भी वो ध्रुव बंदी में चली जाएगी, और ये जो हम देख रहे हैं वो कहीं से ध्रुवोदयी की बात है। अब इसमें विग्रह गति में भी इनका उदय कायम है, पर विग्रह गति में और भी अन्य प्रकृतियों का उदय होगा। कौन से होगा, तो चार गति में से एक, जिसको हम गति कहेंगे। अब पर वहां ऑप्शन है इसलिए उसको ध्रुवोदयी नहीं कहा, पर किसी न किसी गति का तो उदय हमेशा ही रहेगा, तो गति का एक होगा। अब पांच जाति में से कोई एक जाति है, एक इंद्रियादि जो पांच, यानी गति जाति। फिर त्रस या स्थावर, यानी त्रस स्थावर दोनों को नहीं लिया, अपन त्रस या स्थावर वहां ऑप्शन है। स्थिर और अस्थिर देखा था, उसमें ऑप्शन नहीं था। तो त्रस या स्थावर होगा, बादर या सूक्ष्म होगा, यानी उसमें एक ही गिनना है वहां पर, एक गति एक जाति, त्रस में से एक और बादर में से एक। फिर पर्याप्त अपर्याप्त, उसमें से एक होगा। देखो हम चार कहते ना एक टाइम, कौन सी, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, प्रत्येक शरीर, वो शरीर नाम कर्म वहां पहुंचने पर शुरू होगा, प्रत्येक हो या साधारण। वो कब देंगे, मिश्र शरीर में हम लेंगे उसको, यहाँ नहीं लेंगे। तो जो चार हम युगल कहते उसमें से तीन ही लेना, यहाँ पर त्रस वाला युगल में से कोई एक, बादर वाले में से एक, और पर्याप्त पर्याप्त में से एक, ये हो गई यहाँ पर। फिर सुभग या दुर्भग, यानी उसका तो उदय होगा ही होगा, उसमें से एक का, आधे अनादे से में से एक का होगा। और यश यश में से एक होगा।
वर्णगंधर स्पर्श है वो तेजस शरीर और नाम कर्म की अपेक्षा होगा ना
होगी ना, क्योंकि वर्णादि का उदय तो चल रहा है, उसके परमाणु का ग्रहण तो है ही ना वहाँ पर, तेजस और कारमाण का भी तो ग्रहण चल ही रहा है। तो यश अयश हुआ, और अनुपूर्वी में से हो, जिसे गति का लिया वैसे यहाँ पर अनुपूर्वी का उदय, गति नाम कर्म तो पूरे लाइफ टाइम तक, और ये विग्रह गति में मोड़ वाले उसमें होगा, यानी 21 हो गए ना। पहले हमने ध्रुवोदयी देखी 12, कौन सी 12, तेजस कारमा वर्ण दस ये चार, हाँ फिर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ हो गए, अगर अगर निर्मा, ये 12 हुई ध्रुवोदयी। अब जो 9 हमको गिननी है, एक गति है, जाति है, अभी त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, और सुभग या दुर्भग, आदेय अनादेय, यशस अयशस, और अनुपुर 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 ये नौ हो गए, 12-9-21 का उदय होगा वहां पर। इनकी बार उदीर्ण की बात हम बाद में पढ़ेंगे, विग्रह गति में जिसको कारमान काल कहते हैं। अभी मिश्र शरीर में, अभी देखो मिश्र शरीर में जो क्या होता है, अभी इसमें से क्या नहीं होगा तो अनुपूर्वी को निकालेंगे, तो 20 में और ऐड करना है, तो किसको ऐड करेंगे, तो शरीर नामकरणों को, औदारिक हो या वैक्रिक हो, तो तीन शरीरों में से एक, औदारिक आदि तीन शरीरों में से एक, 6 संस्थान में से एक, संस्थान नामकर्म वही शुरू होता है, यानी शरीर संस्थान, फिर प्रत्येक शरीर या साधारण शरीर और उपघात। अब देखो ये अगर एक निकाला और चार मिलाए तो 24 वाला स्थान स्थावरों को तो होगा ही होगा, पंचेंद्रियादि जो तिर्यंज मनुष्य वगैरह है उनको सहनन का भी होगा, अंगोपांग का भी होगा, ख्याल में आते बात? ये थोड़ा अभी हमको सोचना है, यानी यहाँ किस किस का उदय शुरू हो सकता है, तो हमने देखा था कि एक तो अनुपूर्वी घटाना, शरीर नाम कर्म का उदय शुरू होगा, अंगोपांग भी होगा, संस्थान भी होगा और उपघात भी होगा, और जो मनुष्यादि उनको सहनन भी होगा, प्रत्येक या साधारण उसका भी होगा, यानी स्थावरों को 24 का होगा और मनुष्य तिर्यंचों को 26 का होगा, देव और नार की जिनको सहनन ने उनको 25 का होगा। ख्याल में आती बात ये? देवों को 25 कहा मैंने,
25 पे
सहनन नहीं आया,
नहीं पर पांच बढ़ाई तो
देखो वैकिरिक शरीर,
हाँ,
वैकिरिक अंगोपांग, संस्थान,
देवों में संस्थान
तो क्या होगा, संस्थान तीन हो गए, देखो शरीर अंगोपांग संस्थान हो गए, प्रत्येक शरीर है उनके और उपघात है सबके लिए। हाँ देखो स्थावर में तो बेसिक चार आ गए, उसमें देवों में संस्थान सब कह उप अंगोपांग आए, अंगोपांग अंगोपांग एक इंद्रियों में नहीं था, देवों में अंगोपांग एक्स्ट्रा आ गया और मनुष्य तिरेंचों में सहनन एक्स्ट्रा आ गया, वो तो लिया ना, यानी एक इंद्रियों में 24 का होगा, देवों और नारकियों में और आहारकों में 25 का होगा और मनुष्य तिरेंच रेगुलर जो है अन्य जो उनके 26 का। यहाँ तक समझ में आई बात, कौन सी प्रकृतियां यहाँ ऐड होती है, तो एक तो शरीर अंगोपांग जो होगा, तो संस्थान, फिर प्रत्येक या साधारण और सहनन है, उपघात है, मैक्सिमम वहां 6 ऐड होती है, एक निकली और 6 ऐड हो गए। अभी आगे बढ़ते देखो, तो उसको शरीर मिश्र काल या मिश्र शरीर काल कहते हैं। अभी हम उसके अलग नहीं, अभी उसके बाद देखते हैं, जब शरीर पर्याप्ति पूरी होती है, हाँ परघात होता है, उच्छ्वास यहाँ नहीं होता, विहाय गति होता है। देखो अभी मैं बताती हूँ, परघात प्रकृति शरीर पर्याप्ति काल में उदय रूप, यानी शरीर पर्याप्ति काल यानी जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी हुई है और श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, पहले हमने 24, 25 या 26 देखे थे, अब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही किसका उदय होगा, तो कहते परघात का। हाँ त्रस्त स्थावर तो दोनों को है, परघात तो सबको है, फिर एकेंद्रीय हो या पंजनी में आतप उद्योत का हो सकता है, यहाँ पर जिसको है उसका आतप उद्योत का भी होगा शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर, और जिसको विहाय गति है वो भी यहाँ पर हो जाएगा, विहाय गति तो द्विंद्रिया देखते हैं, देखो एक इंद्रिय का 24 था वो 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा या आतप उद्योत नहीं होगी तो 25 का ही होगा। आप बोलना है तो उसमें बोलो,
पहला
शरीर
हाँ देखो देखो शरीर पर्याप्ति का लिखना है ना, ये तो हमने पहले ध्रुव दई और उसमें विग्रह गति लिया। हाँ देखो पहले समय में आपने क्या ऐड किया था? नहीं नहीं एकदम पहले नहीं, वहाँ पहुँचने पर मिश्र शरीर। हाँ देखो आपको लिखना है तो
हाँ
देखो, हाँ शरीर है, अंगोपांग है, संस्थान है, प्रत्येक या साधारण है और उपघात है। एक दो तीन चार पांच और सहनन किसी को जिसको होगा उसको। अब तीसरा काल शरीर पर्याप्ति काल, ये सबको जो उदय रूप होगा वो परघात, ऑप्शनल है वो आतप या उद्योत, और तीसरा ऑप्शनल है विहायु गति। इसमें से जो जिसको यथायोग्य है उसका यह उदय शुरू होगा। ये तो शरीर पर्याप्ति काल। फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति काल जो होता है उच्छ्वास, तो चौथा जो उच्छ्वास काल में उच्छ्वास प्रकृति का उदय होगा, उच्छ्वास वो किसके होगा? पर्याप्तों के होगा। और पांचवा काल भाषा पर्याप्ति काल, उसमें स्वर नाम कर्म का उदय। इसे एक एक बढ़ते हुए ये सब पांच पर्याप्ति की, ये महत्व का है, तभी तो हम उसके उदय कहाँ है तो उदीर्ण की बात हम घटित कर सकते हैं। स्वर नाम कर्म का उदय होता है, यानी सुस्वर या दुस्वर जो कुछ है। यानी हमने देखा विग्रह गति में 21 प्रकृतियां वो अनुपूर्वी सहित, फिर भी वहां पहुंचने पर स्थावरों को तो चार होती है, देवनार के आहार को पांच होगी यानी 25 हो जाएगी, मन सहनन वालों को सहनन भी ऐड करना। शरीर पर्याप्ति काल में क्या? परघात, आतप उद्योत, विहाय गति, फिर श्वास उच्छ्वास, और फिर बाद में स्वर नाम का। यहाँ तक समझ में? अब हम पढ़ेंगे। देखो इसलिए यहाँ देखा था हमने वर्ण रस गंध स्पर्श की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोगी काल सहयोग तक होती, यानी वो तो अनादि से चल ही रही है, विग्रह गति में भी होती है। हाल में आई ये बात हुँ? पर्याप्तों की होगा वो, क्योंकि देखो देखो अन्य जीवों की शरीर पर्याप्ति भी यानी पहली आहार पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं होती है, तो अपर्याप्तों को तो परघात का भी उदय का सवाल नहीं है। ख्याल में है ना, एक भी पर्याप्ति पूर्ण होगी कि उसके पहले मर जाते हैं, तो आगे जो नाम कर्म के उदय रूप होने वाले वो तो उनके होगे भी नहीं, और उनके उसका उदय भी नहीं है परघात का। कनेक्शन नहीं हुआ, आएगा अपने आप। हाँ बोलो, आपका प्रश्न बोलो।
मनुष्य को छह पर्याप्ति एक साथ चालू होती है,
सबको जितनी है उतनी चालू होती
हाँ।
है
तो उदय खाली पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही पर
ना, अभी हमने इसीलिए तो पांच नाम कर्म के पांच स्थान उसी से तो होते हैं, उसकी उदय है ही नहीं उसका, उदय तभी उसी के होगा जिसके वो पूर्ण हो। अपर्याप्त तो नाम कर्म वाले को वो होगी ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अभी हमने अनुपूर्वी की बात देखी थी, तो अनुपूर्वी का उदय नरकानुपूर्वी का उदय में कौन से गुणस्थान वाले को होगा? नरकानुपूर्वी का उदय दो क्यों नहीं? सासादन में मरकर कोई नरक में नहीं जाता, तो विग्रह गति में किसी को नारकियों को विग्रह गति में किसी को सासादन गुणस्थान नहीं होगा। हाँ नारकी मरकर सासादन में आ सकते हैं, तिर्यंच में आ गए, परंतु वहां तिर्यंचानुपूर्वी का उदय होगा उसको। नारकानो पूर्वी का उदय नरक में, नरक के सन्मुख यानी नरक वो नारकी कहलाएगा, उसका नरक गति का उदय है, तो नारकानो पूर्वी का उदय है। गुणस्थान पहला या चौथा, तीर्य गति और उसका समय एक या दो बताया। तीर्य गति प्रायगुण पूर्वी के लिए देखो दो समय अगर हो सकता है, एक या दो समय, वो तो पहला दूसरा या चौथा गुण स्थान लेना। हाँ, पहले गुण स्थान वाले जो सूक्ष्म जो है वो तो तीन समय भी हो सकते हैं, यानी मिथ्यात्व में एक समय या दो समय या तीन समय। हाँ, अब मनुष्य गति प्रायगण पूर्वी पहला गुणस्थान, दूसरा समय और चौथा गुणस्थान। देवों में जो बताया उसमें पहला दूसरा और चौथा है। अब यहाँ तक अपनी बात हुई थी, ये तो हमारी रिवीजन हो गई।
सो एक क्वेश्चन है,
हाँ,
तेरवे गुणस्थान में जो हम लोग कार्बन का योग देखते हैं,
तेरवे में कार्बन का योग, हाँ,
वहाँ पे कितने प्रकृति का उदय होगा?
आप बोलो, आपका प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। हाँ बोलो बोलो, अनुपूर्वी का उदय होगा क्या?
नहीं होगा। हाँ, नहीं।
तो कितने होगी?
27।
अरे विग्रह गति में 21 तो गिनी थी हमने, 21 गिनी थी।
नहीं नहीं, पर ये कार्बन का योग,
कार्बन का योग में शरीर नाम कर्म का उदय वहाँ नहीं।
नहीं, पर तेरहवें गुणस्थान में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होगा दोस्त? एक सब
देखो, अभी निकाले ना पुस्तक, और तीर्थंकर होगा तो उसको एक प्रकृति एक्स्ट्रा होगी, बस इतना ही। अभी कौन सा पेज नंबर 5-6? हाँ, बीस का स्थान देखो ना, 20-21 का। समुद्रघात केवली के सत्ताईस का कभी होता है कपाट में, देखो बीस, ये टेबल देखो ना, 20 का स्थान एक समुद्रघात केवली के कारमाण में उदय योग्य 20। बीस पहले मैंने बताया था ना, 20 ये अनुपूर्वी बिना 20 का, और 21 का जो तीर्थंकर होगी उनके 21 होगी। पेज नंबर 573 पर पूरा टेबल है।
थोड़ा सा में दो सब, अरे एक समय के लिए वो 27 से 28 से वो 20 का हो जाएगा,
होगा। अब देखो भाषा पर्याप्ति में कितने का उदय था उनको?
मनुष्य को 28 या 29 का होगा ना,
अरे तीर्थंकर। हाँ,
हाँ,
अगर सामान्य केवली है तो
28 का होगा, तो 28 में से एकदम रुक के
देखो देखो, तो जो समुद्रघात केवली में 26 का होगा या तीर्थंकर को 27 का होगा? देखो तीर्थंकर की बात है ना,
यहाँ पे 26 और 27 ली, सो हम लोग ने दो कौन सी निकाली?
देखो केवली के औदारिक मिश्र काल में 26,
हाँ तो
जैसे औदारिक मिश्र काल जो हम 26 देखते हैं कहाँ पर, मिश्र शरीर काल,
मिश्र शरीर काल
वही लेना है जहाँ औदारिक मिश्र का योग है वहाँ पर ये होती है।
उपघात का भी नहीं होगा वहाँ पे? नहीं,
उपघात तो पहले समय से होता ही है ना, परघात नहीं होगा।
हाँ, परघात का नहीं होगा।
देखो जो विग्रह गति में जो अनुपूर्वी बिना 20 हो गए, 20 में अभी सामान्य केवली में कौन कौन सी मिलाना उसमें बोलो?
20 पे मिलाना है ना,
जिसमें 6 मिलाना है।
हाँ, गति जाति,
हाँ पंचेंद्रिय सॉरी मनुष्य गति,
हाँ,
पंचेंद्रिय जाति, क्योंकि सवयव केवली की बात,
शरीर अंगोपांग,
औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग,
हाँ चार हो गए।
अभी संस्थान सामान्य होगा तो कोई भी, और तीर्थंकर के समुच्चय, हाँ
एक तीर्थंकर होगा तो
वज्र वृषभ सहनन एक ही होगा सबको, सामान्य हो या तीर्थंकर हो, 6 मिला ही
पीछे एक संस्थान होगा,
हो गया ना सब, तभी तो 6 हो गए।
हाँ 6 हो गए पीछे परघात।
अरे अभी परघात कहाँ से? कपाट में नहीं होगा, कपाट में औदारिक मिश्र है, परघात होता है जब
शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाती है तभी। अच्छा तो परघात कभी नहीं है,
दंड में था वो कम हो गई ना उसने उतनी प्रकृतियाँ।
नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग ने 2 या 3 कम की, वो कौन सी कम की?
जो शरीर पर्याप्ति में जो ऐड करते वो कम कर दिए, विहार गति और परघात कम हो गई। पहले सामान्य को 28 थी, उसमें से विहार गति और परघात कम हो गई, यानी दंड समुद्घात में 28 थी, औदारिक मिश्र में आ गए 26 हो गई, कारमान में गए 20 हो गए, और जहाँ वहाँ तीर्थंकर हो गए तो एक एक ऐड करो, 29 फिर 27 और फिर 21।
नहीं तो वो एक समय के लिए उदीना रुक जाएगी वहाँ पे?
बिल्कुल, वहाँ उतने ही उदय रूप है बस। देखो अभी हम थोड़ा आगे यहाँ से पढ़ते हैं, ये तो हमने इसलिए पूरा रिवीजन किया, तो अभी ये जो हम पढ़े कौन सी कहाँ है तो क्यों है उसका रीजनिंग हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए अब जो हमने नाम कर्म की प्रायगना पूर्वी की बातें हमने देखी, अब पेज नंबर 59 पर आना, ये आज का विषय शुरू होता है। हाँ नहीं, क्योंकि केवल पढ़ने से फायदा नहीं ना, ये हमको डिराइव करना आना चाहिए। देखो अभी देखो, अगुर लघु स्थिर अस्थिर, अभी ये पढ़ते हमको याद आता है कैसे ये ध्रुवोदयी है, हा? तो अगुर लघु स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ और निर्माण, इन नाम कर्मों की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय तक होती है। यही बात हमने वो तो तेजस कारमान के बारे में भी देखे ना, हमने शरीरों की उदीर्णा में देखा था, गति जाति और शरीर में तेजस कारमान की बातें उन्होंने बताई थी कि नहीं बताई थी? तेजस और जो कि योग सहित है, वो 57 पेज पर देखा था, नीचे से दूसरी तीसरी लाइन में, तेजस और कारमान उदीरक अन्यतर जीव है जो योग से सहित है, यानी अनादि से, वही ये बात जो यहाँ हमने देखी तो वहां पर भी घटित हो रही है। वर्णादि की बात हमने देखी थी, मिथ्या दृष्टि से संयोग केवली तक, यानी ये जो ध्रुवोदयी यहाँ हमने तेजस कारमान पहले देखा, फिर वर्णादि देखे, और अभी वो 6 हो गए और यहाँ पर 6 लिए, हाँ ख्याल में आई बात। अब उपघात नाम कर्म की उदीर्णा, अभी इसका उदय कहाँ से देखा था हमने? वो पहुँचते ही विग्रह गति में नहीं था, तो उपघात नाम कर्म की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर, नहीं नहीं परघात तो शरीर पर्याप्ति होने पर, शरीर मिश्र काल या मिश्र शरीर काल कहते हैं, उपघात नाम कर्म की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। विशेष इतना है कि ये जो बताएंगे ना, विशेष इतना है कि उसकी उदीर्णा आहारक ही करता है, अनाहारक नहीं करता। देखो अभी उसमें वो ना विग्रह गति में होता है और ना 13वें में समुद्घात वाले के होता है, हाल में आई बात ये, चौदहवें में तो नहीं होते वो, तो तेरहवें में, चौदहवें में किसी की भी उदीर्णा नहीं है। क्योंकि एक तो उसका उपघात का उदय कब शुरू होता है, जब शरीर धारण करता है तब, यानी वो आहारक होता है तभी से करता है, मरण तक होगा, परंतु वो तो संयोग केवली के कारमान का योग में नहीं होगा, इसलिए कहते आहार ही करता है अनाहारक नहीं करता। परघात नाम कर्म की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। विशेष इतना है कि शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ जीव ही उसकी उदीर्णा करता है। अभी हमारे ये जो काम आ रहा है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति काल में इसका उदय शुरू होता है, तभी उसकी उदीर्णा भी शुरू हो जाएगी। उच्छ्वास नाम कर्म की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। विशेषता इतना विशेष इतना है कि आन पान पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ जीव ही उसका उदीरक होता है, यानी अपर्याप्तों के तो है ही नहीं है, और पर्याप्तों को भी वो श्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर उसका उदय उदीरना चालू हो जाएगा। आतप नाम कर्म का उदीरक शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ बादर पृथ्वी का एक जीव ही होता है। देखो आतप का उदय तो बादर पृथ्वी का एक ही होता है, और हमने देखा था ना विग्रह गति में उसका उदय है, ना मिश्र शरीर में है, तो शरीर पर्याप्ति में वो तो हमने देखा था परघात आतप उद्योत और विहाय गति का उदय होता है वहां पर, उसकी उदीर्णा वहीं पर शुरू होती है। उद्योत नाम कर्म का उदीरक उसकी भी वहीं पर शुरू होती है पर्याप्ति, पर वो किसके होगा, उद्योत एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक के तीर अंशों के। उद्योत नाम कर्म का उदीरक शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ ही एक इंद्रिय अथवा द्विंद्रिय आदि आदि लिए ना द्विंद्रिय आदि बादर जीव होता है। तो द्विंद्रिय आदि कहने से तीरियन चले ने सारे और सूक्ष्मों को नहीं होता बात। हाँ उद्योत में अग्नि का एक वायु का एक को नहीं होता है। अग्नि हाँ। अब प्रशस्त विहायगति नाम कर्म का उदीरक हमने देखा था शरीर पर्याप्ति होने पर उसका उदय शुरू होता है। पंचेंद्रिय पर्याप्त संगी और असंगी मिथ्या दृष्टि जीव से लेकर संयोग केवली प्रशस्त की बात है, संयोग केवली के अंतिम समय तक होता है। प्रशस्त शब्द डाला ना पहले, इसलिए संगी असंगी से लिया। इसी प्रकार अप्रशस्त विहायगति नाम कर्म की उदीरणा का भी कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए सब त्रसकायिक संयोग केवली तक उसकी उदीरणा करते, सामान्य केवली उनको अप्रशस्त विहायगति का भी उदय हो सकता है। ये जो अभी हमने अग्नि वायु को छोड़कर बताया ना, नीचे लिखा है देखो, जरा हम फुटनोट पढ़ते हैं। ता प्रतावता प्राप उदीरो आदावनामाए आतपनाम बादर पृथ्वी जीवो शरीर पज्जत्तिये पज्जत्तयदो चेव उदीरो इति एतावानयम् पाठ उपलभ्यते कोष्ठकांतर्गतः। यानी तो अभी हमने ऊपर देखा था बादर पृथ्वी का एक शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ जीव ही आतप का उदीरक होता है। उत्साहस सराण य पज्जत्ता आण पाण भाषासु सौवन्नुन्नुत्सासो भाषा व्यजान रुज्जति बायर पुढ़वी आयावस्य वज्जित्त सुहम सुहम तसे उज्जो यसे तिरिये ओ उत्तर देहो ये देवजयी। यानी उत्योत का तीर्यंचों में होता है और बांदर पृथ्वी आयावस या वज्जित नीचे वो ज्यादा स्पष्ट लिखा है पंजत बायरे पर्याप्त और बादर चिय आय व उद्दीरगो भूमो आतप का उत्तीरक होता है भूमो में पृथ्वी में होता है और पुढ़वी आहु वनस्सई पृथ्वी का एक अपकायिक और वनस्पति का एक बादर और पर्याप्त उत्तर तनुय उत्तर तनु यानी उत्तर शरीर बनाने वाले विगल पणिंदीय तिरिया उज्जो व दीर्घा भणिया विगल पणिंदीय यानी विकल पंचेंद्रिय यानी पंचेंद्रिय और असंगी संगी असंगी सगला सुगति सराणम पज्जत्ता संख देवा सदेवाय इयराणम नेरिया नरतिरि सुसरस्य विगलाय पंच संग्रह। ये जो हमने अभी देखा ना उसका आतप और उद्योग का उदय किसको होता है वो हमने देखा था। आतप उद्योग की बात यहाँ होगी देखो जरा शरीर पर्याप्ति काल में उसका उदय होता है ना किसको होता है ऐसा खास नहीं लिया है वहां पर इतने आतप उद्योग इतना ही लिखा है पहले आई थी वो बात कहीं कहीं
तो अग्नि का एक जीव को आतप का उद्योग अरे वो उदय नहीं है
आतप का तो केवल पृथ्वी का एक कोई
पृथ्वी का एक कोई है बादल
उसमें अन्य का सवाल ही नहीं है ना जल को है ना वनस्पति को
वो तो बराबर है।
अच्छा आतप तो केवल पृथ्वी का एक और वो भी सूर्य बिंब के सूर्य बिंब के अभी आगे बढ़ेंगे देखो अभी हम आए हैं पेज नंबर 60 पर त्रस नाम कर्म की उदीरणा देखो हमने देखा विग्रह गति में भी है त्रस या स्थावर का उदय उदीर्णा होगी तो त्रस नाम कर्म की उदीर्णा त्रस कायिक मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है उसका उदय तो 14वें के अंत तक है पर उदीर्णा 13वें में रुक जाती है। बादर नाम कर्म की उदीर्णा बादर मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है ये जो हमने देखा था कि ये जो विग्रह ने ध्रुवोदयी में उसको ध्रुवोदय ने ऐसे ध्रुवोदय नहीं है पर त्रस या स्थावर में आती है ऑप्शनल में पर उदय होगा तो विग्रह गति में भी होगा ऐसी प्रकृतियां हैं। त्रस हो गया बादर हो गया पर्याप्त नाम कर्म की उदीर्णा पर्याप्त नाम कर्म के उदय से संयुक्त मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है प्रत्येक शरीर नाम कर्म की उदीरणा देखो अगर त्रस है इसलिए सहयोगी केवली तक लिया अभी स्थावर होगा तो एकेंद्रीय होगा केवल मिथ्या दृष्ट गुण स्थान होगा इस तरह से हमको डिराइव कर सकते हैं। प्रत्येक शरीर नाम कर्म की उदीरणा प्रत्येक शरीर मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोग केवली के अंतिम समय तक होती है विशेष इतना है कि आहारक जीव ही उसका उदीरक होता है अनाहारक नहीं है क्योंकि प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय वहां पहुंचने पर होता है मिश्र शरीर काल में विग्रह गति में नहीं होता विग्रह गति में वो अनाहारक रहता है और संयोग केवली जो समुद्घात में भी अनाहारक है इसलिए उस समय प्रत्येक शरीर का उदय नहीं होगा इसे आहारकों के ही होता है ये कह दिया हाँ तभी से मिश्र शरीर काल कहते जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होगी यानी पहले आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति का जो काल है पूर्ण होने का वो सब उसमें ले लेना समझ में ना आ रखी कहाँ है, क्योंकि वो तो विग्रह गति में विग्रह उसका उदय नहीं है, इसलिए उदय उदीर्ण नहीं है। स्थावर नाम कर्म का स्थावर मिथ्या दृष्टि उदीरक है, अभी उसमें एक मिथ्यात्व ही गुणस्थान है। सूक्ष्म नाम कर्म का सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव उदीरक है। अपर्याप्त नाम कर्म का अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से संयुक्त मिथ्या दृष्टि उदीरक है। और साधारण शरीर नाम कर्म का उदीरक अन्यतर साधारण का एक आहारक जीव ही होता है, क्योंकि साधारण हो या प्रत्येक हो वहां पहुंचने पर ही उसका उदय उदीरना शुरू होती है। यहां तक समझ में आई बात? यश कीर्ति नाम का उदीरक द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त ही कर करके ही पंचेंद्रियो वहां पज्जत्तो छेव उदीरो। यश कीर्ति नाम का उदीरक द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त ही होता है। अने अपर्याप्त जीवों के यश कीर्ति का उदय नहीं है। एकेंद्रीय के होता है, सभी एकेंद्रियों के होता है? हाँ, वो बताएंगे अभी। तो जिसको नहीं होता उसको छोड़ना पड़ेगा। तेज काय कर वायु काय को छोड़कर लिखा है ना, एकेंद्रिय बादर पर्याप्त जीव भी उसकी उदीर्णा करता है। यानी एकेंद्रियों में सूक्ष्म को यश कीर्ति का उदय नहीं होगा, अपर्याप्तों के नहीं होगा, और वायु का एक तेजो का एक किन नहीं होगा। तथा संयता संयता और संयोग केवली के अंतिम समय तक संयत जीव भी नियम से यश कीर्ति के उदीरक है। लक्ष्मी ऐसा क्यों कहा? उदय की विच्छित्ति कहाँ होती है? और यश कीर्ति चौथे में, यानी पांचवे से सारे यश कीर्ति के उदय वाले ही है, उसी के उदीरक। यानी पहले वाले को नहीं होता वो नहीं है, पर पांचवे से नियम से उसी के हैं, क्योंकि यश कीर्ति के उदय की विच्छित्ति चौथे में हो गई। अयश की अयश की और बंद की कहाँ हो गई?
छठे
चौथे में किस किस की उदय की विच्छित्ति होती है? चौथे में, चौथे में, उसमें उसमें बोलो, उसमें बोलो। पूरी सत्रह है उसमें उसमें उसमें। देखो पहले में पहले वहाँ का, हाँ वहाँ का कषाय चोकड़ी बता देना।
देवगति नरक गति वैक्रिक शतक लेना है।
देखो वैक्रिक वैक्रिक अंगोपांग, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति नरकत्यानुपूर्वी, सॉरी देव
चौथे तक है,
बराबर है ना, चौथे तक है।
वैक्रिक शतक का वहाँ
देवायु नरकायु भी लेना,
देवायु
अन्य दो अनुपूर्वी भी यहीं पर कहना।
सो तो 14 हो गए।
हाँ
अभी तीन,
अब तीन बताना। दुर्भग दुसोरा ना दे, दुसोरा ना दे, अरे नहीं यशस कीर्ति की हो गई, कहाँ हो गई? दुस्वर दुस्वर यहाँ नहीं है, दुर्भग अनादे और अयशस कीर्ति, सॉरी दुस्वर की नहीं यहाँ, दुस्वर की तो तेरवे तक, तेरवे तक है। दुर्भग अनादे और अयशस कीर्ति हो गई। निकला क्या पत्रावली? लास्ट वे तीन कौन से है? दुर्भग अनादे और अयशस कीर्ति, अयशस कीर्ति, बरोबर। अभी देखो यहाँ क्या कहते, इसलिए क्या कहा, यश कीर्ति का उदीरक नियम से पांचवे से लेकर तेरहवे के अंत तक। देखो जब प्रग्रह से प्रगृहित अर्थात संयम को स्वीकार करता है, अच्छा, तब अयश कीर्ति का वेदक भी यश कीर्ति का वेदक होता है। यानी उसी का अर्थ है, हमने उसका उदय रुक जाता है, हमने देखा था ना। यानी किसी के अयश कीर्ति चल रहा है और वो संयम धारण हुआ उनके, तो उसका वो वेदक है ना, उसका उदय है। शेष जीव दोनों का वेदन करते हैं, दोनों किसी को यश कीर्ति का किसी को अयश का और वो भी पलट सकता है। प्रग्रह का अर्थ संयम और संयमा संयम। अच्छा, प्रग्रह से प्रगृहित लिया यानी दोनों लेना, संयम और संयमा संयम। प्रग्रह का अर्थ अयश कीर्ति नाम कर्म की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समय दृष्टि तक होती है यानी चौथे तक हो सकती है। होती ही ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो तो उसका उदय भी जो है ना पलटने वाला है। सुभग और आदेय की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। विशेष इतना है कि अन्यतर गर्भोपक्रांत चाहिए, गर्भोपक्रांत हुआ, गर्भोपक्रांत संगी व असंगी जीव उसकी उदीर्णा करते हैं। क्या कहा? सुभग और आदेय की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती। विशेष इतना है कि अन्यतर गर्भोपक्रांत संगी व असंगी जीव उसकी उदीर्णा करते हैं यानी संभूषण की नहीं होगी तथा देव देविया संहिता संयत एवं संयत जीव नियम से उसकी उदीर्णा करते हैं। अभी जो हमने अयश की जो उदय की विच्छित्ति कही वैसे दुर्भग और अनादेय की उदय की विच्छित्ति चौथे में है तो इसलिए वहां पर भी संहिता संयत वगैरह उसको भी ले लिया। देव देवियों के भी सुभग और आदेय की उदय उदीर्ण होती है।
केंद्रीय से चतुर्दीय तक इसका उदय नहीं होगा।
किसका?
दुर्भग, अरे सुभग और आदेय का।
किसको नहीं होता है वो देखो देखो देखो
देख यहाँ पे क्या बताया। सुभ आदि की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से संयोग केवली तक होती है। विशेष इतना है अन्यतर गर्भोत्क्रांत संगी व असंगी कोई होता है तो एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक इसकी उदीर्णा नहीं करेंगे।
ऐसा कहाँ लिखा है?
नहीं पर यहाँ पे लिखा है ना अन्यतर गर्भोत्क्रांत संगी व असंगी जीव उसकी उदीर्णा करते है।
हाँ यानी चतुरिंद्रिय तक उसका उदय नहीं है। दुर्भग और अनादेय का उदय है यानी सुभग और आदेय का उदय उदीर्ण किसके होगी? हाँ पर वो भी गर्भोपक्रांति के लिए समूर्छन को नहीं लिया यहाँ पर।
समूर्छन के लिए जो पांचवे गुण स्थान तक जाता है उसको भी नहीं होगी।
यहाँ क्या लिखा? संयता संयत क्या लिखा? संयता संयत नियम से उदीर्ण करते हैं।
चौथ ने उसका उदय की अभी मना किया।
मना किया? किसने मना किया?
खाली गर्भ गर्भोजीवी उनकी उदीर्ण करते हैं।
देखो दुर्भग और अनादि की उदीर्ण कहाँ तक है? तो चौथे तक है।
हाँ। और यहाँ पे क्या बताया?
तो पांचों में जाते हैं तो उसका उदय शुरू हो जाता है
सबूचा जीव को भी।
हाँ क्योंकि चौथे में उदय की विच्छित्ति ही क्या बताती है बोले वो तीरंच हो या कोई भी हो।
सबूचा जीव जो चौथे गुण स्थान में जाता है उसको नियम से दुर्भग और अनादेय की उदय होगा और पांचवे में उसको
नहीं 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 ऐसा नहीं लेना है। देखो देखो जो पहले जो हमने यहाँ लिखा था किसके लिए? यश कीर्ति के लिए प्रग्रह से प्रगृहित यानी जो संयम संयमा संयम धारण करता है तो नियम से यश कीर्ति का उदीरक होता है। वैसे यहाँ ले लेना।
सो पांचवे गुण स्थान में भी उदीरना किसके होगी? बेखाली समझ के लिए
पूछ रहा
हूँ। होगी ना किसकी? आदेय और हाँ
आदेय और सुबह
बिल्कुल होगी बिल्कुल होगी। क्योंकि हमने देखा ना सुभग या दुर्भग विग्रह गति में भी उसका उदय है आदेय अनादेय का भी विग्रह गति से उदय है परंतु अन्य जो है उसके तो यहाँ तो गर्भोपक्रांतों के तो उसकी उदीर्णा ले ली है, परंतु अन्य में उसका नहीं कह दिया है। अब जो उदय ही नहीं, जो नारकी को नहीं लिया तो नारकी के तो नियम से तो दुर्भग और अनादेय ही रहेगा और उसी की उदीर्णा होगी। अभी आगे बढ़ेंगे, तीर्थंकर में विशेष ये रहेगा। नहीं नहीं, उसकी तो बात अलग से बताई ना।
नहीं, तो बताया गर्भक्रांत को उसकी उदीर्णा होती है और पीछे सब
देखो तथा लिखा है ना, तथा देव और देविया ले लिया, संयता संयत ले लिया, संयत जीव लिया, नियम से उदीर्णा करते ये भी लिया है ना। हाँ, ये पढ़ा था हमने। अब 61 पेज पर दुर्भग व अनादेय की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समय दृष्टि तक होती है, तक बताए। वहां भी नहीं होती वो बात नहीं, कौन करते है सुबह का आदेय की वो तो बता दिए, अब इसकी कौन करते है तो पहले से चौथे तक की। सुस्वर और दुस्वर की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। अब वो कब होगी, भाषा पर्याप्ति काल में उसका उदय शुरू होगा। विशेष इतना है कि द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त होकर ही उनकी उदीर्णा करते हैं, क्योंकि स्वर नाम कर्म का उदय वहां शुरू हो जाता है। तीर्थंकर नाम कर्म का उदीरक जिसके केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका है ऐसा सहयोगी तीर्थंकर ही होता है। उदय तो 14वें में भी है पर उदीरक यहाँ तक ही। ये नाम कर्म का क्या है, बहुत झमेला है ना, बहुत बड़ा। दुस्वर ही होगा ना, क्योंकि जिनको जिसका उदय है उसकी बात है, इसलिए वो तो हाँ इन जनरल बताए कि स्वर नाम कर्म का उदय कब होता है, तो शरीर भाषा पर्याप्ति से पूर्ण होने पर, इतना ही लेना उसमें। उच्च गोत्र की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। विशेष इतना है कि मनुष्य और मनुष्यनी उसकी कदाचित उदीर्णा करते हैं, क्योंकि मनुष्यों में नीच गोत्र और उच्च गोत्र दोनों का ही उदय पाया जाता है। देव देवी तथा संयत जीव उसकी उदीर्णा नियम से करते हैं, क्योंकि निज गोत्र के तो उदय की विच्छित्ति कहाँ होती है, पांचवें में होती है। तथा संयता संयत जीव कदाचित उदीर्णा करते हैं, क्योंकि मनुष्यों में पांचवें गुणस्थान होने पर वो उच्च गोत्र का उदय कहलाता है और तीर्यंच तो निज गोत्र वाले ही रहेंगे, उसको तो पांचवें गुणस्थान होने पर भी नीच गोत्र का ही उदय रहता है, इसलिए कहा कदाचित। नीच गोत्र की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक होती है। विशेष इतना है कि देवों में उसकी उदीर्णा संभव नहीं है, तीर्यंच और नारकियों में उसकी उदीर्णा नियम से तथा मनुष्यों में कदाचित होती है। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। ये समझ में आई बात, यानी मनुष्यों में नीच गोत्र उच्च गोत्र दोनों, वो तो गुणस्थान में वो तो पलट भी जाता है, तीर्यंचों में कंटिन्यू नीच गोत्र का ही उदय उदीर्णा रहेगी, देव में उच्च गोत्र के ही होगी। अब काल में लेना है, यानी उदीर्णा का काल एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा काल अभी निबोधिक निरस्व चाहिए, अभी निबोधिक ज्ञानावरणीय का यानी मति ज्ञानावरण का उदीरक अनादि अपर्यवसित यानी अनादि अनंत और अनादि सपर्यवसित जीव है, अनादि शांत। इसी प्रकार से शेष चार ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तेजस कार्मन शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अग्रु लघु, स्थिर स्थिर, शुभ शुभ, निर्माण और पांच अंतराय, इन प्रकृतियों के ये कैसे ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं, पांचों ज्ञानावरण ध्रुव दई है, उसका अनादि से उदय तो चल ही रहा है। कब तक होगा? तो बारहवें के अंदर तक उदय है, उदीर्णा अवली पहले तक खुद इसकी उदीर्णा है। तो जैसे जो अभव्य है वो अनादि अनंत उसकी उदीर्णा करते ही रहेंगे। इन प्रकृतियों के उदीर्णा काल की प्ररूपणा इन दो भंगों से करनी चाहिए। कौन से दो भंग तेजल? बहुत अच्छा, अनादि अनंत और अनादि शांत। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि। अभी इसके लिए कोई सम्यक तो प्राप्त करना चाहिए, जरूरी नहीं है। देव में गया तो उसका उदय नहीं है, अपर्याप्त काल में उसका उदय नहीं है, इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय है, क्योंकि ये अध्रुवोदयी प्रकृतियां है। यानी उसका उदय शुरू हो गया और मिट गया एक समय में, ये हो सकता है। उनकी उदीर्णा का काल उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है, क्योंकि किसी भी निद्रा का उदय अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है। आप ये क्या कहते हैं, हम छह छह आठ आठ घंटे सोते हैं ना, अरे पर वो पांच इंद्रियों, पांच निद्राओं में से अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में निद्रा पलटती है, कभी गहरी होगी कभी तरल होगी, इस तरह से। इसी प्रकार से निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों के उदीर्णा काल का काल डालो बीच में कथन करना चाहिए, यानी उसमें भी ये बात लागू होगी। साता वेदनी की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय, हमने देखा उसका उदय एक समय के होकर पलट सकता है, इसलिए एक समय। और उत्कर्ष से छह मास है, ये याद है कहाँ होता है? सहस्रार देव में, किसी भी किसी के होता है। किसी के होता है, छह मास तक लगातार उसका उदय है तो उसकी उदीर्णा भी चलेगी साता का। और असाता के लिए कोई सातवें नरक का नारक ही देखा था। हाँ, देवी, क्योंकि वहां के जो है वो देव ही हो गए ना, क्योंकि देवियां तो नीचे की पीतलेशा वाली कहलाएगी। देवियां एक्चुअली जन्म से नीचे के पहले दूसरे की कहलाते हैं ना, उनके बाकी सब जो कुछ लेशा वगैरह जो है आयु, वो नीचे के उसके समान होती है। असाता वेदनी की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय। दोनों में हाँ, नारकियों को भी साता असाता अंतर्मूर्त में पलटता ही है। किसी के रेयरली किसी के अपवाद है, छह महीने की बात है। अब ऐसे असाता में हाँ सहस्रार के देव के किसी के होता है। अब क्यों सहस्रार को अकेले का लिया, उसका क्या कारण है वो पता नहीं, परंतु ये शास्त्र में आता है बस। हाँ, असाता वेदनीय में जघन्य से एक समय, क्योंकि हो सकता है एक समय असाता होकर फिर साता हो जावे। और उत्कर्षतः अंतर्मूर से अधिक 33 सागरूपम प्रमाण है। हाँ, क्योंकि सातवीं पृथ्वी में प्रवेश करने से पूर्व और पश्चात अंतर्मूर्त मात्र काल तक असाता वेदनी की उदीर्णा पाई जाती है। अब यही रुकेंगे हम, वो तो पंचेन्द्रियों में जाता है ना, शुरुआत में अंतर्मूर्तक असाता का उदय होगा। जावाणी ते ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो अश्विन भाई।